कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुशी बांटता
निर्मोही के तौर करेंगे।
निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे शेष बनेंगे।
मानव जीवन में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है हमारे कर्म और दूसरा है धर्म। हम कर्म को भी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकते। कर्म हमें करने ही हैं। चैतन्य मीन्स क्रियाशील। भल व्यक्ति अपनी पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय फर्ज कर्तव्यों को छोड़कर कई संन्यास ले लेते हैं, घर बार छोड़कर चले जाते हैं कि हम कर्म सन्यासी हैं। परंतु घर बार छोड़कर कहीं भी जाते, जंगल में गिरी कंदराओं में जाकर भी जीवन जीना, श्वास लेना, आंखों से देखना, तपस्या करना, ये भी तो कर्म है। तो संपूर्ण कर्म सन्यासी कोई भी नहीं बन सकता है। कर्म हमें करने ही हैं। इस प्रकार धर्म को भी हम नहीं छोड़ सकते। कई समझते हैं, हमारे लिए तो वर्क ही वर्शिप है, कर्म ही पूजा है। हम अपनी फर्ज अदा करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, यही धर्म है। बेशक कर्तव्य पालन करना, फर्ज अदाई, ये बहुत अच्छे गुण हैं, परंतु धर्म तो हमें ऐसे अनेकानेक गुणों का ज्ञान देता है, गुणों की धारणा करवाता है। इसलिए धर्म को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि धर्म की धारणा के बिना कर्म भी श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। बेशक हमें धर्म को यथार्थ रूप से समझने की जरूरत है। आज धर्म क्रियाकांड, पूजा पाठ, शास्त्र पठन, कथा श्रवण तक सीमित हो गया है, उसका आचरण पर कोई प्रभाव नहीं रहा है। ये देह धर्मों के क्रियाकांड है। देह धर्म भिन्न भिन्न है, पर यहां जो धर्म की बात मैं कर रही हूं वो आत्मा धर्म की बात है, स्वधर्म की बात है। हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। प्रथम लेसन में ही आप सबने समझा है कि हम सभी आत्माएं ओरिजिनली शुद्ध हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारे असली गुणधर्म है। यहां आत्मा धर्म को फॉलो करने की, धारण करने की बात है। जब हम स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म करते हैं, हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो धर्म के संबंध में प्रथम लेसन में ही आपने समझ लिया है, इसलिए इस सृष्टि महापरिवर्तन की वेला के समय परमात्मा का हम सभी आत्माओं के लिए आदेश है कि अब देह धर्म की दीवारें छोड़ो, आत्म धर्म में स्थित हो जाओ। हम स्वधर्म में स्थित होकर ही एक सत धर्म की स्थापना कर सकते हैं। और कर्म के बारे में आज थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे कि जीवन माना ही कर्म करना, कर्म फल भोगना, आत्मा ही सोचता है, हम ही सोचते हैं, आत्मा ही करता है, इसलिए आत्मा ही भोगता है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में है कर्मों का व्यापार, कर्मों का लेन देन। इसलिए कर्म के संबंध में ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट रखना जरूरी है। अब आप कल से कर्म क्षेत्र पर वापस जाएंगे तो ये ज्ञान जो बुद्धि को सत्य बनाता है और बुद्धि शुद्ध बनती है तो सही निर्णय, सही परख आती है। हम सोच समझ कर हर कर्म को कर सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। मन में विचार उत्पन्न होता है, विचार कर्म का बीज है। क्यों राजयोग में हम चिंतन को श्रेष्ठ बनाते हैं? क्योंकि विचार कर्म का बीज है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है और फिर हम आत्मा कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं। हर कर्म का प्रभाव आत्मा में संचित होता है, रिकॉर्ड होता है, जो स्वभाव संस्कार बनता है। हम सब जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती, लेकिन जीवन भर किए हुए कर्मों के फल स्वरूप बने संस्कार साथ लेकर जाती है। जैसे संस्कार, ऐसी आत्मा की गति होती है और ऐसी ही पुनः जीवन स्थिति उससे प्राप्त होती है। हम आत्मा एक्टर है इस बेहद विश्व नाटक के। एक्टर मीन्स एक्शन करना, कर्म करना। हम आत्मा अविनाशी हैं, प्रकृति अनादि अविनाशी है। इस पुरुष और प्रकृति, आत्मा और प्रकृति का बना हुआ संसार का ये खेल भी अनादि अविनाशी। इसलिए हर आत्मा को इस वर्ल्ड ड्रामा में छोटा या बड़ा, मुख्य या गौण, पार्ट प्ले करना ही होता है। इसलिए एक बात हम समझ लें कि इस संसार खेल से सदा काल के लिए कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। जब जीवन में दुख और अशांति देखते हैं, भोगते हैं, तो हम सोचते हैं कि इससे तो जन्म मरण से ही छूट जाए, मोक्ष को प्राप्त कर ले, जीवन से छूटने की बात हम करते हैं। ये कोई जीवन का शक्तिशाली उच्च लक्ष्य नहीं है। कुछ भी ना करना वो कोई ताकत नहीं है। आज जो भी फिल्म जगत में एक्टर बनते हैं, हर कोई हीरो बनना चाहते, उसी के लिए मेहनत करते हैं। जो सफल नहीं होता है वो क्षेत्र संन्यास लेता है। हम सभी मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके जब सुख पाना नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं और दुख शांति भोगते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इससे तो इस दुनिया से छूट जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारी बुद्धि में गलत समझ है। ये गलत समझ है कि जन्म मरण दुख का कारण है, इसलिए लोग सोचते हैं जन्म मरण से छूट जाएंगे तो सुख पा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि जन्म मरण दुख का कारण नहीं है, वो तो प्रकृति का एक क्रम है, शरीर लेना और छोड़ना, ये कुदरत का नियम है। दुख शांति का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण उत्पन्न विषय विकार है, जिससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या वैर द्वेष ये विकृतियां हैं, और इन विकारों के वश किए हुए विकर्म पाप कर्म दुख शांति के मूल कारण है। हमें कर्म से नहीं छूटना है, जन्म मरण से छूटने की बात नहीं है, हमें बुराइयों से छूटना है, विषय विकारों से छूटना है, पाप कर्मों से मुक्त होना है। तो जीवन में ही मुक्ति है, फिर हम जीवन जिएंगे, कर्म करेंगे, व्यवहार में आएंगे, फिर भी हम रोग शोक दुख दर्द से मुक्त रहेंगे। उसे ही तो सतयुग स्वर्ग कहते हैं। इसलिए परमात्मा आकर जो सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग की जीवन पद्धति सिखाते हैं, उसका लक्ष्य जीवन मुक्ति है। जीवन जीते कर्म करते संबंध में रहते हमें अज्ञानता, कमजोरियां, विकार, बुराई, व्यसनों से मुक्त रहना है। इसलिए हम आप सभी भाई बहनों को यही कहेंगे कि इस पवित्र महान तीर्थ पर आप आए हैं अपनी बुराइयों को स्वाहा करके जाना है, बुराइयों को अर्पण कर देना है और नित्य ज्ञान योग का अभ्यास करने से अपने आप आत्मा में वो शक्ति आती है। इसलिए संसार से, जीवन से छूटकर शून्य बनकर बैठ जाना ये कोई श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है। श्रेष्ठ लक्ष्य ये है कि हम कर्म ऐसे महान करें जो सुख और शांति के फल पाए। हम भारतवासी कर्म के सर्व सामान्य ज्ञान को जानते हैं। हर एक भारतवासी जानता है अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलता है। ये हम सब कहते हैं, अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल पाएंगे, बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल हम पाते हैं। जो हम करते हैं उसका फल भोगने के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। कुदरत ने, परमात्मा ने कर्म करने के लिए हम सबको स्वतंत्र रखा है। हरेक आत्मा को विवेक मिला है, करना है नहीं करना है, अभी करना है कभी नहीं करना है, कैसा करना कितना करना, हम स्वयं उसके निर्णायक हैं। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, परंतु कर्म का फल भोगने के लिए हम बाध्य हैं। इसलिए गीता में कहा है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। जो हो चुका वो रिजल्ट तो हमें भोगना ही है। दो अच्छे कर्म किए उसके अच्छे फल हमें मिलेंगे, पर एक गलत किया वो भी फल हमें मिलना ही है। तो जब कर्म करने ही हैं और कर्म करने में हम स्वतंत्र है, अधिकारी है, तो क्यों नहीं हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, ताकि सदा सुख शांति के फल हम पाते रहे। आज अगर जीवन में दुख और अशांति के फल हम खा रहे हैं तो अंडरस्टूड है हमारे द्वारा जाने अनजाने गलत कर्म के बीज बोए जा रहे हैं, तब तो दुख अशांति के फल मिल रहे हैं। तो जितना फल पाने की प्रबल इच्छा रहती है अच्छा रिजल्ट आवे, सफलता मिले, जितनी ये प्रबल इच्छा रहती है उतना ही प्रबल अटेंशन। कर्म रूपी बीज बोने में भी तो रखना है, अच्छे फल पाने हैं तो क्वालिटी बीज बोना है, क्वालिटी केयर लेनी है, अच्छा धूप पानी खाद देना है और पूरा ध्यान देना है तो अच्छे फल मिलते हैं। तो हमें भी उस पुरुषार्थ पर भी ध्यान देना है। हम कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते, कर्म फल भोगते हैं तब सोचने बैठते हैं कि मुझे इतनी भोगना क्यों आती है, मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, प्रतिदिन के जीवन में आत्मचिंतन करने का अभ्यास नहीं है, आत्मदर्शन स्वदर्शन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की अभ्यास नहीं है, इसलिए फिर व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों को दोषित करते हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, यही मेरे लिए विघ्न रूप है, यही मेरे लिए कांटा है। हम दूसरों को दोषित करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं बहन जी लोग ही ऐसे हैं, जमाना ही ऐसा है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। हम दूसरों को दोषित करते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है। पर जब कर्म करते हैं हम अटेंशन नहीं देते, हम हर एक अपने जीवन को देखें, अपनी रोज की दिनचर्या को देखें, हम घंटों व्यर्थ सोचते रहते, शायद मुख से तो हम कम बताते हैं, मन में कितना कूढ़ते रहते, मन में क्या क्या सोचते रहते। आपस में मिलते हैं हम घंटों व्यर्थ बातें करते हैं, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते, हम घंटों दिनों गलत कामों में लगे रहते हैं। कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते, कर्म फल भोगते हैं तो सोचने लगते हैं, कोई फिर भाग्य को दोष देता है, कोई भगवान से नाराज हो जाते हैं, कोई माँ बाप से नाराज हो जाते, दूसरों से नाराज होते हैं। बात तो हमारे अपने कर्मों के बनाए हुए हिसाब किताब की है ना, इसलिए कर्म और कर्म फल के बारे में भी हम जानते हैं, सिर्फ मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते। जैसा कर्म ऐसा फल, जैसा बीज बोएंगे ऐसा ही फल मिलेगा, आम की गुठली बोएंगे आम मिलेगा, अमरुद के बीज बोएंगे अमरुद मिलेगा, नींबू के बीज बोएंगे नींबू मिलेगा, जो बीज बोएंगे उस बीज की संरचना अनुसार ही फल मिलता है। कर्म रूपी बीज का भी ऐसा है, जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलता है। जो करेगा वो पाएगा। मैं खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, मैं खाऊं और आपका पेट भर जाए ऐसा नहीं हो सकता है। हरेक को खुद के उद्धार सुधार का खुद ही पुरुषार्थ करना। हमारे सेवा केंद्रों में कई माताएं बहने आती हैं, नियमित ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। हम उनके परिवार वालों को, उनके पति को कहते हैं, आप भी आइए, आप भी रोज ज्ञान योग करिए। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं हमारे घर से आते हैं ना, वो करते हैं ना, हमने उनको छूट दे रखी है। भाई वो करेगी वो पाएगी, आप करेंगे आप पाएंगे। हरेक को अपने जीवन की नैया अपने कर्म के बल से पार कर दी। हम अपने कर्मों को सुधारने तैयार नहीं है, इसलिए गुरुओं के आशीर्वाद कृपा चमत्कार के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दूसरों पर आधारित रहते हैं। पर दूसरों के द्वारा कहां तक मिलेगा? हमें खुद अच्छे कर्म करके खुद पर कृपा करनी। आज ही हमारा जो मॉर्निंग ज्ञान मुरली का क्लास है, आज के डिस्कोर्स में ही बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षा हमें दी कि अपनी बैटरी चार्ज करने पर ध्यान दो, दूसरों के चिंतन में मत जाइए, अपनी उन्नति के लिए अपनी बैटरी चार्ज करिए, अपना समय सफल करिए। वेद भी कहते हैं कि कर्म की शुद्धि के बगैर वेद भी कुछ नहीं कर सकते। कोरी विद्वत्ता या पांडित्य जीवन को पार नहीं कर सकता है। हमें ज्ञान को आचरण में लाना है, हमें ज्ञान का स्वरूप बनना। योगी बनना माना क्या है? ज्ञान को जीवन में धारण करना है। हर एक को खुद अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। जितना करेंगे उतनी प्राप्ति है, नुकसान तो है ही नहीं ज्ञान को धारण करने। हम यहां भाई बहनों से हाथ उठवाते हैं कि कौन कौन जीवन में धारण करेंगे, तो हाथ उठाते हैं, कई नहीं उठाते हैं ये सोच कर कि फिर वहां जाकर हम धारण न कर सके। तो जितना करेंगे उतना फायदा है। 10 दिन करेंगे तो 10 दिन भी तो अच्छी बात जीवन में रहेगी ना, नुकसान तो है ही नहीं। इसलिए विज्ञान भी इस लॉ को स्वीकार करता है cause and effect. Action and reaction are equal and opposite. Karma ka ye siddhant hame jeevan mein svikar karke chalna hai. Par kahan hum gaflat kar baithte, kahan hum samajh nahi paate hain, misguide ho jate hain, wo ye point hai. कई सोचते हैं कि जो गलत करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं. हम सच्चाई से चलते हैं तो हम जैसे थे ऐसे ही रहे. जो करप्शन करते हैं, हेराफेरी करते हैं, मिलावट बनावट करते हैं, वो शाहूकार बन गए. हम सच्चे हैं, हम ऐसी स्थिति में रहे. जो दादागिरी करते हैं उनके काम हो जाते हैं. हम सरलता से कहते हैं, नम्रता से कहते हैं तो लोग सुनते रहे. ये देखकर सोचकर व्यक्ति, एक सामान्य इंसान क्या सोच लेता है कि भाई छोड़ो सच्चाई को, ईमानदारी को, हम भी झूठ करेंगे. छोड़ो नम्रता को, हम भी गुस्सा करेंगे, दादागिरी करेंगे. दिन प्रतिदिन हम अच्छाइयां छोड़ते जा रहे और कमजोरियों को अपनाते जा रहे. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कर्म रूपी बीज की शक्ति को समझ नहीं पाते. प्रकृति जगत में भी आप देखिए, दो चीज, एक हर बीज का अपना पनपने का समय होता है. आप टमाटर, मिर्ची, धनिया के बीज बोएंगे, बहुत जल्दी उग जाएंगे, फल दे देंगे, खत्म हो जाएंगे. पर नारियल है, आम है, वॉलनट है, उनको बोएंगे, उनको पनपने में टाइम लगता है. हर बीज का अपना जर्मिनेटिव टाइम ड्यूरेशन है. जो तुरंत पनप गया, फल दिया, तो हम समझते हैं देखो किया और फल मिला. जो बीज पनपने में टाइम लगता है, वहां हम भूल कर बैठते हैं कि देखो ये बीज तो पनप ही नहीं रहा है. पर नहीं, वो समय आएगा जब उसका रिजल्ट आएगा. और दूसरा, हर बीज की अपनी शक्ति है. कोई एक ही बार फल देके खत्म हो जाता है, कोई वर्ष 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 फल देते ही रहते हैं, उस बीज में इतनी शक्ति. कर्म रूपी बीज का भी वही हिसाब है. जैसे प्रकृति की धरणी में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही अनेक गुना फल मिलेगा. आप कांटेदार झाड़ियों के बीज बोएंगे तो वो कांटेदार झाड़ियां ही अनेक गुना होकर उगेगी. पर अच्छे फल फूल के बीज बोएंगे तो अच्छे फल अनेक गुना मिलेंगे. इस कर्म क्षेत्र का भी वही हिसाब है. इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर जो बीज बोएंगे अनेक गुना ऐसा ही फल मिलता है. आज नहीं कल, अभी नहीं तो बाद में, इस जन्म में नहीं तो और जन्म में फल मिलता ही है। बस इस बात को अगर हम बुद्धि में रखें तो कभी भी जल्दबाजी में, आवेश में आकर, संग दोष में आकर, वातावरण दोष में आकर हम गलत करने तैयार नहीं होंगे। जो बीज बोया वो फल मिलता ही है, कोई छूट नहीं सकता है। परमात्मा भी नहीं हमें छुड़ा सकता है। कर्म का सिद्धांत इतना अटल है, इतना तटस्थ है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं भावी तारे ना ही तरे, किया वो भुगतना ही है। इसलिए बहुत ज्ञानवान बनकर, बहुत अपने आप में शांति और धीरज रखकर हमें हर कदम उठाना है। तब कहते हैं आदि मध्यांत, सोच समझ कर कर्म करो। क्योंकि कई बार गलत शॉर्टकट लेते हैं अल्पकाल के लाभ लेने के लिए, पर हम उसके दूरगामी परिणामों को नहीं सोचते। अगर गलत तरीके से हम कमाएंगे तो कहते हैं ना कि गलत जिस मार्ग से धन आता है उसी मार्ग से वो जाता है। गलत तरीके से कमाया धन गलत मार्ग पर ही ले जाएगा, आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी, गंदी आदतें पड़ेगी, अच्छे संस्कार परिवार में नहीं आएंगे, आपका एक ही बेटा बच्चा ऐसा निकलेगा कि ये करे पर पानी फेर देगा, क्योंकि गलत धन से उसकी पालना हुई। इसलिए कर्म की व्याख्या प्रकार को भी हम समझ लें। बहुत सिंपल व्याख्या परमात्मा ने बताई है कि आत्मा की सत्य स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद में उनके सत्य ज्ञान के अनुरूप जो कर्म हम करते हैं वो सत्कर्म है। आप देखिए बहुत कुदरती व्यवस्था है, हर आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। इसलिए जब हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज के विरुद्ध कर्म करने जाते हैं तो दिल खाता है। इनर वॉइस हमें कहता है ये ठीक नहीं है, नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी ओरिजिनल सत्य स्थिति हमें जगाती है, पर बार 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 उस वॉइस को दबाकर हम गलत काम कर लेते हैं। हमारे लेटेस्ट पतित संस्कारों के वश होकर तो वो वॉइस धीमा हो जाता है। बेशक वो बंद नहीं होता है पर वो धीमा हो जाता है। तो कुदरती ये व्यवस्था है कि हमारा ओरिजिनल कॉन्साइंस, हमारा अपना शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, हमें जगाता है, सावधानी देता है। पर चूंकि आत्म चिंतन का अभ्यास नहीं है, उस सदा पावन परमात्मा से बुद्धि जोड़ते नहीं है, तो हमारे कलयुगी संस्कारों का प्रभाव बढ़ जाता है और हम गलत कर्म करते रहते हैं। तो आत्मा की सत्य स्थिति में स्थित होकर परम सत्य परमात्मा की याद में और उनके सत्य ज्ञान को बुद्धि में रख कर अगर हम कर्म करें, अपने हर कर्म को सत्य बना सकते। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना है ताकि हम परख सकें कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आधे गलत कर्म, भूल, पाप इसलिए हम करते हैं कि हमें सही ज्ञान ही नहीं। तो परमात्मा आकर इसलिए सत्य ज्ञान देते हैं ताकि हमारा सद्विवेक जगे, हम परख सकते हैं फिर राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आत्मचिंतन में हम क्या करते हैं? हम साइलेंस में बैठकर अपने सत्य स्वरूप को रोज रिवाइज करते हैं, खुद खुद को पक्का कराते हैं, तो इससे अवेयरनेस कायम रहती है। और पाप कर्म मीन्स आत्म विस्मृत होकर देहाभिमान में आकर विषय विकारों के वश जो भी कर्म करते हैं वो पाप कर्म है। हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते जो हमारे दैनिक साधारण कर्म है, उठना, बैठना, खाना, पीना, देखना, बोलना, सोचना, सुनना, हर क्षण कर्म चलते रहते हैं। पर ज्ञानवान आत्मा शरीर कर्मेंद्रिय द्वारा हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, संसार का खेल कर्म सिद्धांत के आधार पर चलता। ये सृष्टि का खेल भी कर्म सिद्धांत पर चलता है। जब हम आत्माएं पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, तो प्रकृति जगत, प्रकृति पशु पंछी भी सात्विक होते हैं और उस टाइम पीरियड को सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। जब हम मनुष्य आत्माएं पवित्रता, दिव्यता, सच्चरित्रता गुमाते हैं, गवाते हैं, देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं, तो हमारे पतित बनने से प्रकृति भी पतित बनती है और संसार कलयुग बन जाता है। आज जो हम देख रहे यही नरक है। भाइयों और बहनों, स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, नरक कोई पाताल में नहीं है, देवताएं कोई काल्पनिक नहीं है, असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है। लोग ये मानते हैं देवताएं ऊपर हैं, असुर पाताल में हैं, हम इस मृत्यु लोक के मानवी हैं, परंतु नहीं, हम ही देवता थे जब हम सत्य थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। कहते हैं ना, भगवान ने हर इंसान को अपने जैसा बनाया। जैसा रचयिता ऐसी रचना होती है ना। कहते हैं ना भी, बाप ऐसा बेटा, जैसा बीज ऐसा फल, जैसा रचयिता ऐसी रचना। एक बेस्ट डांसर है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी, एक बेस्ट चित्रकार बेस्ट चित्र बनाएगा। परमात्मा ने भी अपने जैसा हर इंसान को बनाया। वो गीत भी गाते हैं ना, भगवान ने अपने जैसा हर इंसान बनाया, ये झूठ कहाँ से आया, ये पाप कहाँ से आया। जब हम ये भूल जाते हैं, अपनी रियलिटी भूल जाते हैं और बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, तो ये झूठ और पाप आते हैं। तो हम ही देवता थे, दिव्यता और पवित्रता गंवाकर सामान्य बन गए। देह अभिमान विकारों के वश हम ही असुर बन गए। असुर कोई अलग योनि के भयानक बड़ी बड़ी आंख वाले, दांत वाले, सिंह वाले कोई और प्राणी नहीं है। हम ही जब गुस्सा करते हैं, अहम दिखाते हैं, वैर दुश्मनावट में आते हैं, उस समय कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? उस समय हम कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? हम ही तो असुर जैसे दिखते हैं। मन में जो विकार आते हैं वो चित्र में कैसे दिखाएंगे? चेहरा ही भयानक बनाएंगे ना, पर बात तो अंदर की वृत्ति की है ना। इसलिए हमारे गिरने से संसार गिर गया, हमारे ऊंचे उठने से संसार श्रेष्ठ बनेगा। पर आज हम उल्टा कहते हैं, दुनिया खराब हो गई। अरे दुनिया खराब हो गई, हम खराब हो गए, कोई रियलाइज नहीं करता है। सब करप्टेड है, दूसरों का ही सोचते हैं। हम अपने आप में भी देखें ना, हमारे खराब होने से परिवार, समाज, गांव, शहर, दुनिया खराब हो गई। अब इसी को अच्छा बनाना है तो शुरुआत कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? थोड़ा पावर से बोलिए ना, खुद से करेंगे ना, करेंगे ना? हाँ, तो ताकत से हाथ उठाओ फिर। हाँ, बहुत अच्छा। परिवर्तन खुद से हम करें। इसलिए भगवान ने सिंपल योजना बनाई है विश्व परिवर्तन की, स्व परिवर्तन से विश्व पर्यंत। हम कहते हैं ना, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। इंसान में क्या बदल गया? हाथ पांव आंख नाक तो वही है ना, बदल क्या गया? विचार बदल गए, आचार बदल गए, वृत्ति बदल गई है, दृष्टि बदल गई है। तो हमें खुद को ही ठीक करना है। भगवान कहते हैं, दुनिया की चिंता नहीं करो, तुम अपनी गारंटी दो, तुम अपना आंगन साफ करो, मोहल्ला अपने आप साफ हो जाएगा। कर सकते हैं ना इतना? सारी दुनिया का कीचड़ दूर नहीं कर सकते हैं, खुद के पांव को जूता पहना सकते हैं? हम इस दुनिया में रहते अपने आप को ज्ञान योग का कवच पहना दे, हम बुराइयों से मुक्त रहेंगे, हम अनेकों को प्रेरणा दे सकते। आज एक ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया, आज लाखों बने हैं ना। तो हम हरेक लग जाएंगे इस पुरुषार्थ में तो हम दुनिया को भी बदल सकते। इसलिए हमने नियम संयम मर्यादाएं तोड़ी, इसलिए प्रकृति भी पशु पंछी जगत भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है। और आज वो रिजल्ट हम देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है और कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही। अब उसमें भी कहेंगे भगवान का कोप हो गया। भगवान का कोप नहीं है, हमारे कर्मों से प्रकृति असंतुलित हो गई। भगवान गुस्सा नहीं करते, भगवान तो न्यारा है, निराला है, वो प्यार करते हैं, ज्ञान देते हैं। फिर अच्छा करना नहीं करना वो हमारे कर्म पर है। कहीं इस बात को न जानने के कारण दुनिया के वर्तमान को देखकर भगवान पर नाराज हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाई। भगवान को कहते क्यों ऐसी दुनिया बनाई। भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई। देखो आपके बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा ने अपने जमाने में मकान बनाया, जब बनाया तो नया ही था ना। पर पीढ़ियों के बाद आपके समय में वो पुराना जर्जरी भूत हो गया, तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे बाप दादा के बाप दादा ने ऐसा कैसा टूटा फूटा मकान बनाया। भाई उसने तो अच्छा ही बनाया था, पर समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर अभी वो टूटा फूटा हो गया। भगवान ने भी स्वर्ग बनाया था इस दुनिया को, हर इंसान को देवता बनाया था, सुखमय संसार था। वर्णन तो पढ़ते हैं ना, शेर और गाय, बाघ और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे, सोने के महल थे, दूध घी की नदियां थी, ऐसा देवी देवताओं का राज्य था। अभी भी 100-200 वर्ष पूर्व का गायन सुनते हैं ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश में, जहां हर बालक एक मोहन था, राधा एक एक बाला, कोई एक राधा एक कृष्ण की बात नहीं है। ये वो देश है जहाँ हर कोई कृष्ण जैसा, हर कोई राधे जैसा। पर परिवर्तन संसार का नियम है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हम कलयुग अंत पर आ गए हैं, तो आज पूरा खेल बिगड़ गया। इसलिए परमात्मा आते हैं और फिर से इस संसार के खेल को बनाते हैं, और उसके लिए वो ज्ञान देते हैं, वो इंसान को ठीक करते हैं, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कर्म की लीला के आधार पर आत्मा की कला बढ़ती है घटती है। परफेक्शन को 16 कला कहते हैं, है ना। जो फुल्ली डेकोरेट होते हैं तो कहते हैं ना 16 श्रृंगार किया। कोई 100% बात सत्य है तो पहले कहते थे ना 16 आना सच बात है। ये फुल मून उगता है तो हम कहते हैं आज चंद्रमा 16 कला खिला है। ये परफेक्शन के लिए कहते हैं। तो जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, तो हम परफेक्ट हैं, सब कुछ रिदम में चलता है। जब हमारे कर्म गिरने लगते हैं जन्म बाय जन्म, तो आत्मा की कला परसेंटेज कम होती है, खेल बिगड़ने लगता है। पर अच्छे या बुरे, एक सत्य आज आपको समझना है कि अच्छे या बुरे कर्म का फल मानव मानव योनि में ही भोगता है, वो पशु योनि में उसको भटकना नहीं पड़ता है। मनुष्य शरीर से पशु नहीं बनता, कर्म से, चलन से, संस्कार से पशु जैसा बन जाता। भक्ति में हम ये मानते रहे कि जब मनुष्य आत्मा पाप करती है तो उसका फल भोगने के लिए उसे पशु योनि में धकेल दिया जाता है, और 84 लाख पशु योनि में भ्रमण करने के बाद उसे मानव जन्म मिलता है। और कहते हैं मानव जीवन दुर्लभ है, पर अब मानव कर क्या रहा है? आप देखिए, आज मनुष्य जानवर से भी बदतर बन गए हैं। लोग कहते हैं एक कुत्ता भी, एक घोड़ा भी मालिक का खाकर मालिक को वफादार रहता है, और इंसान जिसका खाता है उसी का खोदता रहता है, उसकी ही थाली में छेद डालता है। बताइए कौन ऊंचा है, इंसान ऊंचा है कि घोड़ा और गधा ऊंचा है? हम कर्म से पशु बल्कि पशु से भी बदतर बन गए हैं, ये रियलाइज करने की बात है। चलन से, संस्कार से पशु जैसे बन गए। इसलिए बड़ों को तो कह नहीं सकते हैं, छोटे बच्चों को कहते रहते हैं बंदर जैसा है, गधे जैसा है, ठीक से बैठता नहीं, क्योंकि बड़े को तो कह नहीं सकते हैं, छोटे बच्चे को कहते रहते हैं। पर वो बच्चा ऐसा क्यों पैदा हुआ? हमारे द्वारा भी तो कुछ संस्कार गए हैं ना उस, तो पाप करेंगे तो पशु योनि में जाना पड़ेगा कि बात नहीं है, हम ऑलरेडी पशु जैसे बन चुके हैं। इतनी जहरीली वृत्तियां है कि नहीं है? एक दो को मारने, काटने, लूटने, खत्म करने, क्या क्या हम इंसान कर रहा है, तो ये क्या है? जानवर से भी तो जहरीले हम बन गए। हिंसक वृत्तियां क्या क्या है? आप तो दुनिया के बीच रहते हैं, आपको कदम कदम पर पता है, क्या समाचार हम सुनते रहते हैं, आज चारों ओर क्या हो गया, कितनी गिरावट है, कितनी वृत्तियां गंदी हो गई, किसी के भी चरित्र सेफ नहीं है, कोई संबंध सलामत नहीं है, ये जानवर से भी गिर गए हैं हम। यही नरक है, यही घोर कलयुग है। पाप करेंगे तो कलयुग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, ऑलरेडी नरक में हैं। इसलिए परमात्मा आकर हमें इस असुर या पशु जैसी स्थिति से सच्चा मानव पवित्र योगी बनाते हैं। ये मानवता के लक्षण है। पवित्र योगी बनना, अच्छे मैनर्स अपनाना, ये मानव के लक्षण है। लोग कहते हैं ये तो योगी होंगे वो बनेंगे, अरे ये मानवता के लक्षण, और मानव से देवता बनने का, संपूर्ण मानव बनने का पुरुषार्थ परमात्मा कराते हैं। अगर पशु योनि में ही पाप के फल भोगने हैं तो मानव योनि में दुख क्यों है? मानव योनि में दुख क्यों है? अगर पापों की सजा खाने के लिए गधा घोड़ा बनना है, पशु योनि में जाना है, तो मानव योनि में तो सुख ही होना चाहिए ना, क्यों दुख है? आज कितने कुत्ते बिल्ली शाहूकारों के घरों में कारों में घूमते हैं और कितने इंसान भूखे नंगे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। अब घोड़ों की रेस के घोड़ों की संभाल इंसान करता है, किस किस स्थिति ऊंची। इसलिए अच्छे बुरे जो भी कर्म हम करते हैं मनुष्य मनुष्य योनि में ही उसका फल भोगता है। इसलिए ये तो किसी ने शुभ भावना से कि भाई ज्ञान से लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो किसी ने सोचा कि चलो भय से सुधरते हैं, तो ये भय फैलाया कि भाई देखो कर्म ठीक नहीं करेंगे जानवर बनेंगे। पर ये तो कलयुग आ गया और हम पतित बन गए, क्योंकि सत्य समझ के बिगर कर्म नहीं सुधर सकते, भय से परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, रोज समझाते हैं, रोज समझाते हैं। वो हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई कराते हैं। ये समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि खुद भगवान हमें देवता बनाने की मार्गदर्शन देते हैं। लास्ट बात, ये समय है हमें अपने आप में टोटल चेंज लाना, हमें अंदर बाहर, बाहर वाणी और कर्म दिखते हैं, अंदर माना हमारे आंतरिक मन के अंदर सूक्ष्म आत्म स्वरूप में जो हमारे विचार है, भावनाएं हैं, भाव है, वृत्ति है, दृष्टि है, स्मृति है, अंदर की शुद्धि हमें करनी। क्योंकि कई बार हम बाहरी शिष्टाचार बहुत अच्छा कर लेते हैं, आज के सोफिस एजुकेशन से वो सोफिस्टिकेशन आया है कि हम बाहरी व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं, पर अंदर की वृत्ति और भावना कैसी होती? कई बार अचानक मेहमान आ जाते हैं, हम मुख से तो कहते हैं आइए आइए बहुत खुशी हुई, अंदर क्या सोचते हैं? अंदर क्या सोचते हैं? ये कहां से आ गए? तो शब्द अच्छा बोलना हम सीख गए, बाहरी व्यवहार ठीक करना सीख गए हैं, पर भावनाएं कुटिल है, अंदर की वृत्तियां शुद्ध नहीं है, शुभ नहीं है। किसी की हम बहुत सत्कार करते हैं, सम्मान देते हैं, अवभगत करते हैं, फिर आपस में बात करते हैं कि भाई अभी इनका सत्कार करो, सम्मान करो, फिर हमें इनसे बहुत काम निकलवाना। ये हमारी अंदर की वृत्तियां शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारे व्यक्तित्व में दोहरापन आ गया है, ड्यूअलिटी है, हम अंदर कुछ है बाहर कुछ है। हम बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, हम कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारी इनर पर्सनालिटी में सामंजस्य नहीं है, अंदर बाहर सच्चाई सफाई नहीं, और शायद ये दोहरापन ही हमारे टेंशन का कारण है, हमारी अनैतिकता ही हमारे तनाव का कारण है। आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से और लाखों राजयोगी भाई बहनों के अनुभव के आधार से हम कह सकते हैं कि अगर आपका जीवन अंदर बाहर शुद्ध है तो आपके लिए टेंशन का कोई कारण ही नहीं, फिर कोई परिस्थिति आप पर हावी होगी ही नहीं, आपको कोई भय लगेगा नहीं। कितना भय होता है, ग्रह की दशा बैठ गई, राशि ऐसी चल रही है ना, ये भय क्यों होते हैं? रोज उठते हैं, कईयों को तो आदत है रोज सुबह उठकर सबसे पहले राशि फल देखेंगे, वो पढ़ेंगे क्या लिखा है। अरे जब मेरा वर्तमान श्रेष्ठ है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है कि भाई जो किया है वो फल सामने आएगा, हिम्मत से पार करेंगे, भोगना तो पड़ेगा, पर वर्तमान सही हो जाने से शक्ति आती है। हमें भी बीमारियां आती है, हमारे साथ भी बातें होती है, जो हिसाब बनाए हैं वो चुकाने तो है ही, पर वर्तमान में अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, मन शुभ रखते हैं, वाणी सुखदाई बोलते हैं, अगर अपना वर्तमान में सुधार कर लेते हैं तो आत्मा में एक शक्ति आती है, फिर उस परिस्थिति को हिम्मत से, धीरज से, परमात्मा की याद से सहज पार कर सकते। हम दुखी नहीं हो जाएंगे, घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं होगी। जैसे आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, खर्च आ जाए, नुकसान हो जाए, तो आप घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, आपको पता है आपके पास जमा है, इससे आप इस परिस्थिति को पार कर लेंगे। इस प्रकार जब मन वचन कर्म हमारे सही होते हैं तो एक इनर बैलेंस क्रिएट होता है, इनर पावर क्रिएट होता है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। फिर बात आती है कि ये कर्म का फल तो आता है सामने, पर चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, आप हिम्मत धीरज योग से उस परिस्थिति को पार करेंगे। तो बाबा का ये सत्य ज्ञान और राजयोग का अभ्यास प्रैक्टिकल जीवन में बहुत उपयोगी है। भगवान का ज्ञान है ही घर गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को मंदिर बनाने, हम इंसान को देवता बनाने के लिए। आज हम समर्पित तो यहाँ 21,000-22,000 लोग हैं बस, क्योंकि इस ईश्वरीय कार्य को करने के लिए कोई तो जीवन समर्पित करेगा ना। हमें पहले ज्ञान मिल गया, कहीं हम बंध जाएं, उससे पहले हमें ये ज्ञान मिल गया, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि एक व्यक्ति से बंधे और एक परिवार को संभाले, इससे तो क्यों नहीं भगवान से जुड़े और विश्व की सेवा करें। तो समर्पित तो हम इतने भाई बहने हैं जो भारत में सेवा करते, बाकी सब 10-11 लाख भाई बहने वो तो आपकी तरह ही है ना, वो अपने घरों में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं और साथ साथ रोज ज्ञान योग भी करते हैं और सेवा में भी मदद करते हैं। यहाँ आपको कई बीके भाई बहने लेके आए होंगे, यहाँ सेवा में भी कितने भाई बहने आए। तो इस ज्ञान और योग का लक्ष्य ही है प्रवृत्ति को पवित्र बनाना, ग्रस्ती को श्रेष्ठ बना, और इसलिए वृत्ति शुद्ध, कर्म शुद्ध, स्वपरिवर्तन का ये पुरुषार्थ। तो यही शुभ भावना आप सबके लिए है कि आप भी अपने आप को पहचान कर, पिता परमात्मा को पहचान कर, समय को पहचान कर, स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और अपने मन वचन कर्म से, अपने तन मन धन से विश्व कल्याण के कार्य में भगवान के मददगार बन जाए, बनेंगे ना? हाँ, जो जितना साथी मददगार बनेगा वो अपना ही भाग्य बनाएगा, अपना ही भविष्य उज्जवल बनाएगा। हमारा वर्तमान ही तो भविष्य बनाता है, हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल का रिजल्ट है, तो हम उससे सीखें, जो हमने किया उसी का रिजल्ट वर्तमान है। अगर वर्तमान में कमी पेशी है तो हम सीखें, सबक लें। किसन यहाँ समाप्त करते हैं। बाबा दादियां सदा कहती है, मेहमान बन के आए हैं, महान बन के जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।